भागवतम स्कंद एक अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 16 और 17। निशम्य प्रेष्ठ मायांतं वसुदेवो महामनः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्च रुदेष्णश्च साम्बुजाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगो चक्षित शयनासन भोजनः निशम्य प्रेष्ठ मायंतं वसुदेवो महामनः अक्रूरवृश्चेनश्च रामश्चद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्च रुदेष्णश्च साम्बुजाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगो चक्षित शयनासन भोजनः निशम्य प्रेष्ठ मायंतं वसुदेवो महामनः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्च रुदेष्णश्च साम्बुजाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगोश्च शित शयनासन भोजनः
Yeah.
निशम्य सुनकर प्रेष्ठम प्रियतम को आयंतम गृह आगमन वसुदेवः वसुदेव महामनः उदारचेता अक्रूर अक्रूर च तथा उग्रसेन उग्रसेन च तथा रामः बलराम च तथा अद्भुत अलौकिक विक्रमः शौर्य अथवा पराक्रम प्रद्युम्नः प्रद्युम्न चारुदेष्णः चारुदेष्ण च तथा सांब सांब जांबवती सुतः जांबवती का पुत्र प्रहर्ष अत्यंत प्रसन्नता वेग त्वराह उच्छसित से प्रभावित शयन लेटना आसन बैठना भोजनः भोजन करना। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वसुदेव अक्रूर उग्रसेन बलराम प्रद्युम्न चारुदेष्ण तथा जांबवती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। तात्पर्य वसुदेव ये राजा शूरसेन के पुत्र देवकी के पति तथा श्री कृष्ण के पिता थे। ये कुंती के भाई तथा सुभद्रा के पिता थे। सुभद्रा अपने ममेरे भाई अर्जुन को ब्याही थी और ये प्रथा आज भी भारत के कुछ भागों में प्रचलित है। वसुदेव को राजा उग्रसेन का मंत्री नियुक्त किया गया था और बाद में उग्रसेन के भाई देवक की 8 कन्याओं के साथ इनका विवाह कर दिया गया। देवकी उनमें से एक थी। कंस उनका साला था और वसुदेव ने स्वेच्छा से कंस का बंदी बनना इसलिए स्वीकार किया कि वे देवकी का 8वां पुत्र उसे दे देंगे, लेकिन कृष्ण की इच्छा से यह असफल रहा। पांडवों के मातुल के रूप में उन्होंने पांडवों के समस्त संस्कारों में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने शतशृंग पर्वत पर कश्यप पुरोहित को बुलाया और सारे कृत्य कराए। जब कृष्ण कंस के बंदी गृह के भीतर प्रकट हुए तो वसुदेव ने उन्हें कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर गोकुल पहुंचाया। वसुदेव के अंतर्धान होने के पूर्व कृष्ण बलदेव सहित अंतर्धान हो गए और अर्जुन जो कि वसुदेव के भांजे हैं उन्होंने उनका दाह संस्कार किया। अक्रूर ये वृष्णि कुल के सेनापति तथा कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने एकमात्र स्तुति की एकाकी विधि द्वारा भगवत भक्ति में सफलता प्राप्त की। वे अहूक की पुत्री सूतनी के पति थे। जब अर्जुन कृष्ण की इच्छानुसार सुभद्रा का सफलतापूर्वक अपहरण करके ले गए तो उन्होंने अर्जुन की सहायता की थी। सुभद्रा का सफलतापूर्वक अपहरण होने के बाद कृष्ण तथा अक्रूर दोनों ही उसे देखने गए थे और अर्जुन को दहेज दिया। जब सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु महाराज परीक्षित की माता उत्तरा के साथ ब्याह गया तो भी अक्रूर उपस्थित थे। अक्रूर के श्वसुर अहूक की उनसे नहीं बनती थी, किंतु दोनों ही भगवत भक्त थे। उग्रसेन ये वृष्णि कुल के सर्वाधिक पराक्रमी राजाओं में से थे और महाराज कुंती भोज के चचेरे भाई थे। इनका दूसरा नाम अहूक था। वसुदेव इनका मंत्री था और इनका पुत्र कंस अत्यंत शक्तिशाली था। इस कंस ने अपने पिता को बंदी बनाया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। भगवान कृष्ण तथा उनके भाई भगवान बलराम की कृपा से कंस मारा गया और उग्रसेन पुनः राज्य सिंहासन पर बैठाए गए। जब शाल्व ने द्वारकापुरी पर आक्रमण किया कर दिया तो उग्रसेन वीरता से लड़े और उन्होंने शत्रु को पीछे हटा दिया। उग्रसेन ने नारद जी से भगवान श्री कृष्ण की अलौकिकता के विषय में जिज्ञासा की थी। जब यदुवंश का विनाश होना था तो उग्रसेन को सांब के गर्भ से उत्पन्न लोहपिंड की देखरेख का काम सौंपा गया था। तब इन्होंने लोहपिंड को खंड खंड करके द्वारका के समुद्र तट पर समुद्र जल में मिला दिया था। तत्पश्चात उन्होंने द्वारकापुरी के भीतर तथा राज्य में मद्यपान की पूर्ण मनाही कर दी थी। मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। बलदेव ये वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न अलौकिक पुत्र थे। इन्हें रोहिणी नंदन भी कहा जाता है। जब वसुदेव ने कंस से पारंपरिक समझौता करके कारावास स्वीकार कर लिया था तो रोहिणी को बलराम समेत नंद महाराज को सौंप दिया गया था। अतएव नंद महाराज बलदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों के पोषक पिता थे। सौतेले भाई होते हुए भी कृष्ण तथा बलराम बचपन से ही निरंतर एक साथ रहे। वे भगवान कृष्ण के स्वांश हैं। अतएव वे कृष्ण के ही समान उत्तम तथा शक्तिमान हैं। उनका संबंध विष्णु तत्व से है। वे कृष्ण के साथ द्रौपदी स्वयंवर में गए थे। जब श्री कृष्ण की सुनियोजित चाल से अर्जुन द्वारा सुभद्रा का अपहरण हुआ तो बलदेव अर्जुन पर अत्यधिक क्रुद्ध हुए थे और उन्हें तत्काल मार डालना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र के लिए बलदेव के चरणों में गिर पड़े और इतना क्रुद्ध न होने की विनती की। तब कहीं बलदेव प्रसन्न हुए थे। इसी प्रकार वे कौरवों से भी क्रुद्ध हुए थे और वे उनकी सारी नगरी को यमुना नदी में फेंक देना चाहते थे, लेकिन कौरवों ने उनके चरण कमलों में शरण लेकर प्रसन्न किया। वे वास्तव में कृष्ण के जन्म के पूर्व देवकी के सातवें पुत्र थे, लेकिन कंस के क्रोध से बचने के लिए रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए थे। अतएव उनका नाम संकर्षण है, जो श्री बलदेव के स्वांश भी हैं। चूंकि वे कृष्ण के ही समान शक्तिशाली हैं और भक्तों को अत्यधिक शक्ति प्रदान करने वाले हैं, अतएव वे बलदेव कहलाते हैं। वेदों में भी आदेश है कि बिना बलदेव की कृपा के कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता। बल का अर्थ भौतिक शक्ति नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति है। कतिपय अल्पज्ञ बल को शारीरिक बल मानते हैं, लेकिन शारीरिक बल से किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। शारीरिक शक्ति का अंत भौतिक शरीर के ही साथ हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक बल जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ साथ जाता है। अतएव बलदेव द्वारा प्राप्त किया गया बल कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह बल शाश्वत होता है और बलदेव समस्त भक्तों के आदि गुरु हैं। श्री बलदेव सांदीपनी मुनि के शिष्य के रूप में श्री कृष्ण के सहपाठी भी थे। उन्होंने बचपन में कृष्ण के साथ मिलकर अनेक असुरों को मारा था। विशेषतः तालवन में धेनुकासुर का वध किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे निरपेक्ष बने रहे और भरसक प्रयत्न करते रहे कि युद्ध ना हो। वे दुर्योधन के पक्षपाती थे तो भी वे निरपेक्ष बने रहे। जब दुर्योधन तथा भीमसेन के मध्य गदा युद्ध हुआ तो भी वे वहां उपस्थित थे। जब भीमसेन ने दुर्योधन की जांघ पर या कमर के नीचे प्रहार किया तो वे उससे अप्रसन्न हुए थे और इस अनुचित कार्य का बदला लेना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने भीम को उनके क्रोध से बचाया। भीमसेन से अरुचि उत्पन्न होने से उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और उनके जाते ही दुर्योधन भूमि पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का मृतक संस्कार किया क्योंकि वे उसके मामा थे। उस समय सारे पांडव इतने शोक संतप्त थे कि यह संस्कार करना उनके वश की बात न थी। अंत में वे संसार से विदा होते समय अपने मुख से एक महान श्वेत सर्प उत्पन्न करते गए और शेष नाग द्वारा एक नाग के रूप में ले जाए गए। प्रद्युम्न, ये कामदेव के अथवा अन्यों के अनुसार सनत कुमार के अवतार थे और श्री कृष्ण तथा द्वारका में महारानी लक्ष्मी देवी श्रीमती रुक्मिणी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा के साथ विवाह करने पर बधाई दी थी। वे उन प्रधान सेनापतियों में से थे जिन्होंने शाल्व से युद्ध किया था और युद्ध भूमि में उससे लड़ते लड़ते मूर्छित हो गए थे। उनका सारथी उन्हें युद्ध भूमि से शिविर में ले आया था, किंतु उन्होंने इस कार्य के लिए उसे कोसा था तथा स्वयं अत्यंत खिन्न थे। उन्होंने पुनः शाल्व से युद्ध किया और विजयी हुए। उन्होंने नारद जी से विभिन्न देवताओं के विषय में सुना। वे भगवान श्री कृष्ण के चार पूर्णांशों में से तीसरे हैं। उन्होंने अपने पिता कृष्ण से ब्राह्मणों की महिमा के विषय में जिज्ञासा की थी। यदुवंशियों के बंधु घाती युद्ध में वे वृष्णियों के राजा भोज के हाथों मारे गए। मृत्यु के बाद उन्हें अपने मूल पद पर स्थापित किया गया। चारुदेशन, ये भी श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी देवी के पुत्र थे। द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित थे। ये अपने भाइयों तथा पिता की भांति महान योद्धा थे। इन्होंने विविनिधक से युद्ध करके उसे मार डाला। सांब, ये यदुकुल के महान शूरवीरों में से थे। ये श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवती से उत्पन्न थे। इन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी और महाराज युधिष्ठिर की संसद के सदस्य थे। ये महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे। जब प्रभास यज्ञ में सारे ऋषि एकत्र थे तो सात्यकी ने बलदेव से इनके गुणों का गान किया था। ये युधिष्ठिर द्वारा संपन्न अश्वमेध यज्ञ के समय अपने पिता श्री कृष्ण के साथ उपस्थित थे। इनके भाइयों ने इन्हें गर्भवती स्त्री के रूप में कुछ ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया था और इन्होंने हंसी हंसी में उनसे पूछा था कि मेरे गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। इस पर ऋषियों ने कहा था कि तुम्हारे गर्भ से लोह पिंड उत्पन्न होगा जिससे यदुकुल में बंधु घाती युद्ध होगा। दूसरे ही दिन प्रातःकाल सांब के गर्भ से एक बृहद लोह पिंड उत्पन्न हुआ जिससे उग्रसेन को उचित कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया। बाद में सचमुच ही पूर्व घोषित बंधु घाती युद्ध हुआ जिसमें सांब मारे गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के ये पुत्र अपना अपना स्थान त्याग कर लेटना बैठना खाना जैसे कृत्यों से विरक्त होकर अपने पूज्य पिता की ओर दौड़े। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद भगवान के जो नित्य पार्षद हैं उनका विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, वो कौन हैं, उन्होंने क्या किया इत्यादि। जिन जिन का भी नाम इस श्लोक में आया, श्रील प्रभुपाद जी वसुदेव से लेकर जाम्बवती सुत सांब तक थोड़ा बहुत संक्षेप में सबका वर्णन करते हैं। और इस वर्णन को सुनने के बाद ये प्रश्न आता है कि इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने इनका वर्णन क्यों किया। हाँ, नाम आए थे इनके, लेकिन और भी कुछ लिख सकते थे, बस उनका वर्णन कर दिया, ये भक्ति, ये भक्ति, ये भक्ति, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। तो क्या कारण है, क्यों इनके विषय में कहा जाता है? पहला कारण, भगवान के भक्तों का वर्णन सुनने से हृदय शुद्ध होता है। तो जब श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में भगवान के इन नित्य पार्षदों का वर्णन कर रहे हैं, तो उनका उद्देश्य है कि उनके जीवनी को सुनकर पढ़ने वाले का, सुनने वाले का हृदय शुद्ध हो सके। तो भगवान के भक्तों का वर्णन भागवत में इसलिए किया जाता है क्योंकि पहली चीज, वे भगवान से संबंधित हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं, और क्योंकि वो भगवान से संबंधित और भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनका स्मरण मात्र, पद्म पुराण कहता है कि केवल अगर ऐसे व्यक्तियों का हम स्मरण कर लेते हैं तो उनके पुण्य का 100वां भाग हमें मिल जाता है, केवल स्मरण करने से। दूसरे शब्दों में, इनका स्मरण मात्र हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारे हृदय में ज्ञान प्रदान करता है। क्योंकि इन भक्तों के जीवन से हम सीख सकते हैं कि हरेक भक्त ने अलग अलग गुणों को प्रकट किया और वे सारे गुण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो सारे भक्तों ने, भक्तों का वर्णन प्रभुपाद कर रहे हैं, इनके अलग अलग गुणों की चर्चा अगर हम लोग करें तो जान सकेंगे कि क्या चीज है जो इनको महान बनाती है, क्या चीज है जो इनको कृष्ण के इतना निकट का पार्षद बनाती है, और फिर उस चीज को हम लोग, उस गुण को अपने जीवन में उतार सकते हैं। भगवान के जो नित्य पार्षद होते हैं, इन्हें नित्य मुक्त जीव कहा जाता है। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक नित्य मुक्त और एक नित्य बद्ध। वैसे साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध, ये भी जीव हैं, ये भी एक श्रेणियां हैं। प्रमुख श्रेणियां हैं नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। नित्य मुक्त जीव अर्थात क्या गुण हैं? भगवान के अगर कोई पार्षद बनना चाहते हैं, या जो पार्षद हैं उनके क्या गुण हैं, तो अगर हम भगवान के नित्य पार्षद बनना चाहते हैं तो हमें कौन से गुण अपने अंदर लाने चाहिए? भगवान के नित्य पार्षद अर्थात जो नित्य मुक्त जीव हैं, उनका सबसे पहला गुण है कि वो अज्ञान से परे हैं। उनमें कोई अज्ञान नहीं है, कोई मोह नहीं है, मोह से, अज्ञान से पूर्ण रूप से परे हैं। तो जैसे हम भगवान के पार्षदों की चर्चा करते हैं, ब्रज में गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं, अन्य गोप हैं, या फिर अर्जुन इत्यादि जो भगवान के सखा हैं, चाहे वो ब्रज में हों या द्वारका में हों या हस्तिनापुर में हों, ये सब अज्ञान से परे हैं। कोई अज्ञान नहीं है, कोई मोह नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि अर्जुन जैसा नित्य पार्षद भगवान का, वो मोह में पड़ जाता है। वो भगवान से कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे गुरुजन हैं, मैं इनको नहीं मार सकता, ये मेरे श्वसुर हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बंधु हैं, मैं इनको नहीं मार सकता। और फिर कृष्ण उसको ज्ञान देते हैं, और ज्ञान लेने के बाद फिर अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसाद आत्मयाच्युत। तो इसका क्या अर्थ है? क्या अर्जुन मोह में है? नष्टो मोह, अर्जुन ने कहा मैं मोह में था,
लेकिन आपके ज्ञान देने पर अब नष्ट मोह, अब कोई मोह नहीं रहा, स्मृति लब्धा, फिर मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसाद आत्मया च्युता, आपकी कृपा से स्थितोस्मि, अब मैं स्थित हो गया हूं। गत संदेह, कोई संदेह नहीं है अब। करिष्ये वचनम तवा, आपके वचनों को पूरा करूंगा। तो पांच गुण नित्य मुक्त जीवों के अर्जुन ने दिए कि जो नित्य मुक्त जीव हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, वो क्या करते हैं। सबसे पहला नष्ट मोह, कोई मोह नहीं रहता उन्हें, वो किसी मोह में नहीं होते। तो फिर अर्जुन क्यों मोह में आया, जब खुद ही कह रहा है कि नष्ट मोह। तो अर्जुन इसका अर्थ ये कह रहा है कि मैं मोह में था, अब भगवद गीता सुनकर नष्ट मोह। तो क्या भगवान के नित्य पार्षद भी कभी मोह में आ सकते हैं? नहीं। तो फिर अर्जुन क्यों आए? क्योंकि भगवान चाहते थे, भगवान चाहते थे वो मोह में पड़े, वो प्रश्न करे, और फिर मैं उसका उत्तर देकर भगवत गीता को प्रकट करूं। केवल एक ही कारण था अर्जुन के मोह में आने का। तो इसीलिए जो भगवान के पार्षद होते हैं, उनका पहला गुण है कि वो मोह से परे हैं। नष्ट मोह, कोई मोह नहीं होता है उन्हें। मोह अर्थात, मोह शब्द ये अज्ञान से उत्पन्न होने वाली आसक्ति का सूचक है। मोह शब्द अज्ञान से उत्पन्न होने वाली आसक्ति का सूचक है, प्रेम का सूचक नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि भक्त को कृष्ण से मोह है या भक्त को कृष्ण से मोह होना चाहिए। नहीं, भक्त को कृष्ण से प्रेम होना चाहिए। तो मोह क्या है? ये अज्ञान से उत्पन्न हुई आसक्ति का दूसरा नाम है। और इस जगत में जिसे हम प्रेम कहते हैं वो केवल मोह है, क्योंकि वो प्रेम अज्ञान पर आधारित है, वो प्रेम ज्ञान पर आधारित नहीं है। हम एक दूसरे से इस जगत में प्रेम इसलिए नहीं करते कि हम जानते हैं कि यह शरीर नहीं आत्मा है, हम जानते हैं कि कृष्ण का अंश है, हम जानते हैं कि कृष्ण का दास है, इसलिए प्रेम नहीं करते। हम एक दूसरे से तथाकथित प्रेम करते हैं अज्ञान के आधार पर। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है, ये अज्ञान पर आधारित मोह है। इसलिए इस जगत में प्रेम नहीं, मोह है। नष्ट मोह, जो भगवान के पार्षद हैं उन्हें ये मोह नहीं है। तो क्या इसका अर्थ है कि कृष्ण लीला में कोई एक दूसरे को माता पिता नहीं मानते थे? क्या ग्वाल बाल अपने माता पिता से ये कहते थे कि आप माया हैं, हट जाइए हमारे सामने से? या फिर गोपजन जैसे नंद महाराज अपनी पत्नी यशोदा को कहते थे कोई आसक्ति नहीं, तुम माया हो? हाँ, क्या अर्थ है इसका? जब कह जाता है कि जो मुक्त जीव है वो मोह में नहीं है, तो क्या ये अर्थ है नंद महाराज रोज यशोदा को देखकर ये कहते थे कि दूर हो जाओ मेरी नजरों से, आसक्ति है, मुझे कृष्ण के प्रेम करना है? ऐसा तो कहीं वर्णन नहीं है। नंद महाराज ने कभी नहीं कहा। यह देवकी वसुदेव, वसुदेव ने देवकी को कहा तुम्हारे कारण ये सब हुआ, तुम्हारे गर्भ से आठवां पुत्र जो होगा, देखो कंस का अत्याचार। तो क्या अर्थ है? क्या वे लोग संबंधों को नहीं मानते? क्या वे लोग आपस में प्रेम नहीं करते? इसका अर्थ है कि उनका जो संबंध है वो ज्ञान पर आधारित है, वो कृष्ण पर केंद्रित है। उनके सारे संबंधों के केंद्र कृष्ण हैं। वो एक दूसरे से अगर प्रेम भी करते हैं, आदान प्रदान भी करते हैं, तो केवल कृष्ण की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं। ये अंतर है। इस जगत में हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तथाकथित, प्रेम नहीं है, मोह है, लेकिन जो भी कहते हैं वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी आसक्ति के लिए, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं किसी व्यक्ति से प्रेम करता हूं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करता है कृष्ण की सेवा के लिए। प्रभुपाद कहते हैं वैकुंठ में भी पारिवारिक जीवन है, पति पत्नी हैं वैकुंठ में, लेकिन उनके संबंध हैं केवल कृष्ण की सेवा के लिए। ये पारिवारिक जीवन वहां है। तो इसीलिए ये सबसे पहला गुण है भक्तों का, नित्य पार्षदों का, कि वो मोह में नहीं होते हैं। कभी कभी लीला मात्र के लिए मोह में डाले जाते हैं, जैसे अर्जुन मोह में आ गया, जैसे ग्वाल बाल, एक बहुत बड़ा विशाल सर्प आया, ग्वाल बाल उसके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और सोच रहे हैं हाँ हम मर जाएंगे, बचाओ बचाओ कृष्ण बचाओ। तो ये क्या ज्ञान है? क्या ग्वाल बाल जानते नहीं कि वो आत्मा है, कभी मर नहीं सकते? वो तो बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान के, तो वो क्यों चिल्ला रहे हैं, कृष्ण को कह रहे हैं बचाओ बचाओ कृष्ण बचाओ? किससे बचाओ? क्या वो जानते नहीं कि ये सब माया है, ये सब लीला है? नहीं, उस क्षण के लिए योग माया के प्रभाव में उनको वो भुला दिया जाता है ताकि लीला का आनंद आ सके। हर जीव को माया कृष्ण लीला के लिए कुछ भुला देती है। शुद्ध भक्तों को, मुक्त जीवों को योग माया का प्रभाव होता है, और बद्ध जीव हम जैसे लोगों को महामाया का प्रभाव होता है। तो योग माया के प्रभाव में कृष्ण आनंद लेते हैं, महामाया के प्रभाव में जीव कष्ट भोगता है। ये अंतर है। जब जीव योग माया के प्रभाव में होता है तो वो केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए, जैसे ग्वाल बाल चिल्ला रहे बचाओ कृष्ण बचाओ कृष्ण बचाओ, ये कृष्ण को आनंद देने के लिए, कृष्ण की लीला का आनंद बढ़ाने के लिए। या फिर गोवर्धन लीला में बारिश हो रही है, बड़ी तेज वर्षा हो रही है, कोई बचाने वाला नहीं, हाहाकार मच गया सारे वृंदावन में, सब भाग रहे हैं इधर उधर, लीला का आनंद बढ़ाने के लिए। अन्यथा वे सब नित्य मुक्त नित्य पार्षद हैं भगवान के, ना तो कोई उनको मार सकता है, ना कोई कष्ट पहुंचा सकता है, और ना ही उन्हें भौतिक चीजों से कोई कष्ट होता है। लेकिन योग माया व्यवस्था करती है कृष्ण की लीला में आनंद बढ़ाने के लिए। आप जितनी लीलाएं देख लीजिए, पूतना आई मारने के लिए कृष्ण को, कृष्ण को आनंद आया, कृष्ण ने आनंद लिया लीला का, चाहे फिर कोई भी असुर क्यों ना, कृष्ण आनंद लेते हैं। तो इसीलिए जो नित्य मुक्त जीव हैं वो योग माया के प्रभाव में आते हैं, महामाया के नहीं। लेकिन जो नित्य बद्ध हमारे जैसे जीव है वो महामाया के प्रभाव में है, क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए हैं। वे लोग योग माया के प्रभाव में आकर भी कृष्ण को नहीं भूलते, ये उनका गुण है। हम लोग महामाया के प्रभाव में आते ही कृष्ण को भूल जाते हैं। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, ये नित्य बद्ध है। लेकिन नित्य मुक्त माया के प्रभाव में भी है, योग माया के, कृष्ण को नहीं भूलता, ये उसकी शाश्वत स्थिति है। तो जीव को नित्य बद्ध क्यों कहा जाता है? नित्य बद्ध का अर्थ क्या हम हमेशा बद्ध रहेंगे? नित्य शब्द तो यही सूचक है, नित्य यानी जैसे नित्य मुक्त हम कहते हैं, वो कभी बद्ध नहीं हो सकते, वो कभी महामाया के प्रभाव में नहीं आ सकते, वो कभी कृष्ण को नहीं भूल सकते, उन्हें नित्य मुक्त कहते हैं। तो फिर नित्य बद्ध क्या है? इस दृष्टि से नित्य बद्ध ये होना चाहिए कि वो कभी कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते, वो कभी मुक्त नहीं हो सकते, यही तो नित्य शब्द का अर्थ है। तो नित्य मुक्त किसे कहते हैं? उन्हें जो कभी भगवान को नहीं भूलते, जो कभी महामाया में नहीं आते। तो नित्य बद्ध मतलब हमारे जैसे लोग इसका अर्थ यह है कि हम कभी कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएंगे, हम कभी इस माया के परे नहीं जा पाएंगे, सदैव बद्ध रहेंगे, बंधे रहेंगे। बद्ध यानी बंधे रहना, मुक्त यानी स्वतंत्र। हमारी अवस्था भी बंधी हुई है, बहुत थोड़े लोग हैं हम लोग जो बद्ध हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बहुत बड़े राज्य में एक जेल होता है, तो जेल में कितने लोग होते हैं? ऐसे थोड़ी होता है कि पूरे राज्य के लोग जेल में रहते हैं और दो तीन लोग बाहर रहते हैं। नहीं, सारे लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग केवल जेल में रहते हैं। तो हम लोग उन कुछ लोगों में से हैं जो जेल में रह रहे हैं। बाहर तो बहुत सारे लोग हैं, ये जितने भी जीव इस भौतिक जगत में बहुत थोड़े से जो जेल में आ गए। प्रभुपाद समझाते हैं इसको। तो नित्य बद्ध मतलब क्या, हम हमेशा जेल में रहेंगे? और अगर हम हमेशा जेल में नहीं रहेंगे तो फिर नित्य शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ? सही है ना, नित्य बद्ध का अर्थ है ये हमेशा बद्धा रहेगा। तो फिर भक्ति करने की आवश्यकता ही क्या, वैसे भी बद्ध रहने वाले हैं, नित्य बद्ध हैं, तो फिर भक्ति क्यों करना, कृष्ण का नाम क्यों लेना, क्या लाभ होगा? प्रभुपाद समझाते हैं नित्य शब्द का अर्थ। नित्य बद्ध शब्द का अर्थ यह है कि हमें नहीं पता कि हम कब से बद्ध हैं, इसीलिए हमें नित्य बद्ध कहा गया। हमें नहीं पता, 2 जन्म 20 जन्म 20 लाख जन्म 20 करोड़ जन्म, कुछ नहीं पता कब से बद्ध हैं, इसीलिए नित्य बद्ध कहा गया। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं समः सर्वेषु भूतेषु मद् भक्तिं लभते पराम। जब भगवान की भक्ति करके जीव शुद्ध होके आध्यात्मिक जगत में चला जाता है, समः सर्वेषु भूतेषु, सारे जीव समान हैं, वहां कोई नित्य बद्ध नित्य मुक्त नहीं है, वहां सब समान हैं। समः सर्वेषु भूतेषु, सारे जीव समान हैं। कहां पर? आध्यात्मिक जगत में। यहां नहीं, यहां नहीं सोचना चाहिए कि मैं भी एक ही जैसा हूं, प्रभुपाद भी मेरे जैसे हैं, सब समान, समः सर्वेषु भूतेषु, यहां हम बद्ध हैं। तो नित्य बद्ध शब्द का यही अर्थ है कि हम बहुत समय से बद्ध हैं, जानते नहीं कब से हैं, इसीलिए नित्य शब्द लगाया गया। और भक्ति करके हम बद्ध अवस्था से परे जा सकते हैं। तो ये पहला गुण है, क्षमा चाहते हैं, आज पता नहीं सारे गुण हो पाएंगे कि नहीं। तो पहला गुण नित्य मुक्त जीवों का क्या है? नष्ट मोह, मोह नहीं है उन्हें कोई। दूसरा स्मृतिर्लब्धा, स्मृतिर्लब्धा मतलब अर्जुन कह रहा है मुझे पुनः स्मृति आ गई, मैं भूल गया था लेकिन फिर से स्मृति आ गई कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, मैं तो भूल गया था, मैं सोच रहा था आप मेरे मित्र हैं, मैं आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखेती बुला रहा था, लेकिन याद आ गया आप स्वामी हैं, मैं जीव हूं। तो नित्य मुक्तों का एक दूसरा गुण है, वो कृष्ण की स्थिति को कभी नहीं भूलते, कृष्ण की स्थिति को सदैव याद रखते, कृष्ण कौन है और हम कौन है, इसलिए सदैव कृष्ण पर आश्रित है। अन्यथा सोचिए, इतने बड़े बड़े गोप ग्वाल बाल, इतने बड़े बड़े गोप नंद महाराज इत्यादि, कभी कुछ होता है तो कृष्ण पर आश्रित। कृष्ण छोटे से बालक है, 7 साल का बालक, इंद्र ने बारिश कर दी, कृष्ण बचाओ। अरे आप इतने बड़े बड़े लोग हो, 50 साल के 20 साल के 40 साल के 7 साल के बालक को बोल रहे हो बचाओ। ये नित्य मुक्त जीव है, क्योंकि वो जानते हैं कि केवल कृष्ण रक्षा कर सकते हैं। तो स्मृतिर्लब्धा, वो कभी भूलते नहीं कृष्ण को, किसी भी अवस्था में, किसी अवस्था में नहीं भूलते। हम लोग भूल जाते हर अवस्था में, हम किसी अवस्था में याद नहीं करते, ये हमारा लक्षण है ना। कभी कोई कष्ट भी आता है तो हम सोचते अपनी अपनी शक्ति से बच जाऊं, ये कर लूं वो कर लूं, कभी कृष्ण को याद नहीं करते। वहां देखिए कुछ भी हो कृष्ण, इतनी बड़ी विपदा, नंद महाराज ने ये नहीं सोचा कि कुछ व्यवस्था करूं, कुछ टैंक बनाऊं, कुछ कुछ लोगों को लगा के गड्ढा खुदाऊं ताकि पानी चला जाए, कुछ नहीं, कृष्ण कृष्ण। और कृष्ण ने बड़ा गड्ढा खोद दिया गोवर्धन को उठाकर सारा और गोवर्धन ने गोवर्धन को उठाया तो गड्ढा हो गया होगा वहां पर, स्वाभाविक है। और गड्ढा हो गया तो पानी आना चाहिए था सारा, कुछ भी नहीं आया, एक बूंद पानी नहीं, सारे सूखे खड़े थे अंदर। और जितनी तेज और बारिश भी कौन सी हो रही थी, संवर्तक बादल जो प्रलय के समय आते हैं, जिसकी एक एक बूंद एक एक खंभे के समान होती है, खंभा जानते हैं पिलर, तो एक एक बूंद जिसकी एक एक खंभे के समान हो वो बारिश हो रही थी। ऐसी साधारण नहीं, अभी हो गई बंद हो गई चलो बाहर फिर खेले, और सतत 7 दिन तक बिना रुके खंभे गिर रहे थे ऊपर से, खंभों के रूप में बारिश। आप सोचिए क्या वर्षा होगी वो, ये तो हम लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसी बारिश हम लोग नहीं देखें, हमें प्रलय तक नहीं रुकना है यहां पर। तो वैसी बारिश हो रही थी, तो नंद महाराज ने क्या किया, कोई व्यवस्था नहीं, वो प्रमुख है, राजा है, उनकी रक्षा है सब, उनके कर्तव्य है सबकी रक्षा करना, कृष्ण कृष्ण। इसीलिए स्मृतिर्लब्धा कि हमेशा वो याद रखते हैं। और इसके जो विरुद्ध हैं वो बद्ध जीव हैं, हमारे जैसे लोग, हम कभी कृष्ण को याद नहीं करते, कभी कभार कथा वथा हो तो याद आ जाते हैं हाँ कृष्ण हैं, या कभी कभी कोई आपदा आ जाए विपत्ति आ जाए तो शायद कभी कभी कृष्ण याद हो जाते हैं, या कुछ पाना हो एग्जाम पास नहीं हो रहे कृष्ण कृष्ण, प्रमोशन नहीं हो रही कृष्ण कृष्ण, शादी नहीं हो रही कृष्ण कृष्ण, वैसे ये तो नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति को खुश रहना चाहिए शादी नहीं हो रही, उसको तो धन्यवाद देना चाहिए। तो इसीलिए स्मृतिर्लब्धा, वो सदैव कृष्ण को याद रखते हैं, सदैव उनकी स्मृति बनी रहती है कि हमारे आश्रय कृष्ण है, एक ही आश्रय है। श्रीमद् भागवत में 10 विषय दिए गए हैं और उन 10 विषयों में अंतिम विषय है आश्रय, जिसका प्रारंभ होता है सृष्टि से। इसमें सारे भागवत में विषय हैं, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उत्तया ईशन कथा मनमंत्र निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 विषय भागवत के। और आचार्य समझाते हैं कि 9 विषय केवल 10वें विषय के लिए है और वो है आश्रय और वो है कृष्ण। तो मुक्त जीव कभी नहीं भूलते कि हमारा एक ही आश्रय है, वो है कृष्ण, एक ही नाथ है जगन्नाथ और कोई नाथ नहीं है, ये मुक्त जीव है। ये हम क्यों चर्चा कर रहे हैं कि अगर इन गुणों को हम यही इसी अवस्था में अपने अंदर लाएं तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। प्रभुपाद समझाते हैं ऐसे व्यक्ति को जीव मुक्त कहा जाता है। जीव मुक्त मतलब जो यही इसी जगत में इसी शरीर में रहते हुए भी मुक्त है, जैसे श्रील प्रभुपाद, उनको कोई नहीं कह सकता कि वो बद्ध थे, वो कर्मों से बंधे हुए थे। बद्ध जीव कर्मों से बंधे होते हैं, कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं, लेकिन मुक्त जीव भगवान की इच्छा के अनुसार जन्म लेते हैं, कर्म से नहीं लेते। भगवान कहते हैं जाओ, जैसे प्रभुपाद जी को कहा होगा जाओ थोड़ा जाके कुछ ग्रंथ लिख के आओ नीचे, ये आगे आने वाले 10,000 सालों तक इनका कुछ होने वाला नहीं है, जाओ थोड़े ग्रंथ लिख कर आ जाओ, कुछ मंदिर वंदिर बना देना, एक आंदोलन शुरू कर देना, बाकी मैं देख लूंगा आगे का। प्रभुपाद जी आ गए। तो ऐसे लोगों का जन्म कर्म से नहीं होता, लेकिन हाँ हमारा सबका है, हमें नहीं सोचना चाहिए कि शायद कृष्ण ने मुझे कहा होगा जाओ कारोबार में मंदिर में जाओ, कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कर्म है। और इसका प्रमाण क्या है, क्या प्रमाण है, अच्छा ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि हम लोग तो कर्म से और प्रभुपाद जी भगवान की इच्छा से, ऐसे क्यों, हम भी तो आ सकते हैं भगवान की इच्छा से। अगर हम भगवान की इच्छा से आए होते तो एक क्षण भी भगवान को नहीं भूलते, ये प्रमाण है बस। अगर आपके जीवन में आज तक आप एक क्षण भी कृष्ण को नहीं भूले हैं तो आप भगवान की इच्छा से आए हो हो सकता है आप में से कोई हो क्षमा चाहते हैं, हमारा तो नहीं, हमें तो स्वीकार करना होगा। हमें तो एक क्षण कृष्ण का स्मरण करने के लिए संघर्ष करना पड़ता। प्रभुपाद एक क्षण कृष्ण को नहीं भूले, जहां वो देखते जो चीज देखते कृष्ण का स्मरण। तो इसीलिए कर्म से बंधे नहीं होते हैं मुक्त जीव, उनको सदैव स्मरण होता है। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादात् मयाच्युता। और तीसरा लक्षण त्वत् प्रसादात्, भगवान की कृपा को वो देखते हैं, वो स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सबके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। क्या अर्जुन पर पहले कृपा नहीं थी जो अब बोल रहे हैं त्वत् प्रसादात, आपकी कृपा आ गई अब मुझे? प्रसाद यानी कृपा। इसीलिए जब हम लोग प्रसाद ग्रहण करें तो उसको पेट भरने के लिए नहीं करना चाहिए, बस जल्दी जल्दी खा लो। हाँ, खाना पेट भरने के लिए किया जाता, खाया जाता है। इसलिए हम लोग जब प्रसाद लेते हैं तो हमने ये नहीं कहते कि प्रसाद खाया, हम लोग कहते प्रसाद पाया। पाया यानी कृपा पाई जाती है, प्रसाद पाया। तो हमें जब प्रसाद भी हम लोग ग्रहण करें तो इस भाव में ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। प्रसाद मतलब कृष्ण की कृपा है और हमें मिल रही है। फिर वो कुछ भी हो, फिर वो चाहे करेला हो, लौकी हो, रसमलाई हो, सबको एक समान देखना चाहिए। वो होता नहीं है, मुश्किल है, हमें पता, आप लोगों के हंसने से ही हमें पता चल रहा है कि वो होता नहीं है। प्रयास करना चाहिए। माधवेंद्रपुरी, अभी हम लोग जगन्नाथपुरी में गए थे उनकी समाधि पर, रेमुना में, तो माधवेंद्रपुरी, उन्होंने खीर और मटके को एक समान देखा क्योंकि दोनों कृष्ण का स्पर्श होकर आई है। तो उन्होंने उसको भी रखा और उसको तोड़ के रखा, थोड़ा थोड़ा मिट्टी खाते थे। ये हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोगों ने भी मटका लिया, वो 12 मटके में से एक मटका लिया, हम लोगों ने भी खीर खाई और मटका फेंक दिया, ये जानते हुए कि उसी स्थान पर माधवेंद्रपुरी ने वही मटका तोड़कर अपने धोती में बांध लिया था और रोज थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। हम लोगों ने खीर बड़ी अच्छी तरह से उसको चाट चाट के एकदम साफ कर दिया, मटके में एक बूंद भी नहीं, और फिर मटका कचरे के डिब्बे में। ये बद्ध जीव है। तो त्वत् प्रसादात, भगवान का प्रसाद क्या है, भगवान की कृपा क्या है? एक तो वो प्रसाद जो हमें मिलता है, जो हम रोज खाते हैं, वो भी भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान उस पर अपना दृष्टिपात करते हैं और उनकी दृष्टि से केवल वो शुद्ध हो जाता है। क्योंकि भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। भगवान हाथ से खा सकते हैं, आंखों से खा सकते हैं, कानों से खा सकते हैं, उनके लिए कोई चिंता नहीं। हम लोग केवल, मतलब आप लोग प्रयास मत कीजिएगा कानों से खाने का, आंखों से खाने का। अगर आंखों से खाने का प्रयास करेंगे भूखे मर जाएंगे अब दो ही दिन में फ्लैट। भगवान खा सकते हैं, उनको कोई चिंता नहीं, वो आंखों से खा लेते हैं। तो आंखों से दृष्टिपात करके उसको शुद्ध करते हैं, इसीलिए प्रसाद ग्रहण करना चाहिए केवल। तो प्रसाद, भगवान की कृपा को देखने का प्रयास। शुद्ध जीव, मुक्त जीव भगवान की कृपा को हर क्षण हर अवस्था में देखता है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्मकृतं विपाकम्। ब्रह्मा जी समझाते हैं कि कैसे वो हर स्थिति में भगवान की कृपा को देखता है, क्योंकि वो हर स्थिति को कृपा मानता है। तत्तेनुकंपा, ये सब आपकी कृपा है। मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, आपकी कृपा है। बुरा हो गया, आपकी सेवा करते करते, प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने सेवा करते करते उंगली कट गई, प्रभुपाद ने कहा कृपा है तुम्हारे ऊपर। वो क्या कृपा है कौन सोच सकता है, बताओ? उंगली कट जाए बोले कृपा है। और आप किसी को ऐसा बोले, अभी प्रभु जी का एक्सीडेंट हो गया हुआ है, हमने बोला, अगर हम ऐसे बोले आपके ऊपर कृपा है, बोलेंगे प्रभु जी अगली बार ऐसी कृपा नहीं चाहिए, आप थोड़ा कुछ दूसरी कृपा दिलाइए। प्रभुपाद ने बोला उंगली कट गई कृपा है। तो ये शुद्ध जीव है जो हर चीज को कृपा देखते हैं। प्रभुपाद ने कहा तुम्हारा सर कटना चाहिए था, तुम्हारे कर्मों के कारण, क्योंकि भगवान की सेवा कर रहे हो, केवल उंगली कटी है। ये देखने का नजरिया है। देखिए वो व्यक्ति क्या देख रहे थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, अरे मैं भगवान की सेवा करूं, मेरी उंगली कट गई, ऐसे किसी और की कटी होती ठीक है, मेरी कैसे, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। और प्रभुपाद ने क्या देखा, बहुत अच्छा है केवल उंगली कटी, तुम्हारे कर्मों के कारण अगर भक्ति नहीं कर रहे होते तो सर कट गया होता आज, लेकिन भक्ति कर रहे हो इसलिए उंगली कटी। ये देखने का नजरिया है। तो इसलिए कृपा तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर भी विदधन नमस्ते। हर अवस्था में, हर स्थिति में कृपा मानते हुए भगवान को प्रणाम करता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने कष्ट भेजा मेरे जीवन में। उदाहरण है, आज भी ये कोई शास्त्र की बात नहीं है केवल, आज भी कई ऐसे भक्त हैं। हम एक बार एक ऐसे एक माता जी के विषय में पढ़ रहे थे, वो इस्कॉन के कोई सन्यासी हैं, उनकी शिष्या हैं, तो एक उनको बीमारी हो गई, पांव एकदम खराब हो गए, चल नहीं पाई कई वर्षों से। बहुत पहले अच्छी सेवा करती थी, कुछ समय से फिर एक 50 साल की उम्र के बाद ऐसे हो गया कि दोनों पांव उनके खराब हो गए, इतना कि वो घर में भी यहां से वहां चल के नहीं जा पाती। और वो माता जी जिन्होंने बहुत सेवा की भगवान की आंदोलन में, और उनको ऐसा हो गया। और जब ये सन्यासी उनसे मिलने गए, उनको उनको पता चला कि अरे उनको पता नहीं था, बाद में पता चला कि कई वर्षों से वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही, घर से बाहर तो दूर, घर में ही एक जगह से दूसरी जगह चलना मुश्किल है उनके लिए, एक ही जगह बैठी रहती है दिन भर। तो मिलने गए उनसे, और उन्होंने क्या पाया, वो सोच रहे थे क्या ऐसी अवस्था में आपसे समझी कोई मिलने जाए कोई व्यक्ति हम में से कोई ऐसा हो तो क्या बोलेंगे, क्या महाराज इतना सेवा किया, क्या किया भगवान ने, क्या लाभ हुआ, अरे कुछ ठीक रखते और सेवा कर सकता, फायदा क्या, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो माता जी बहुत धन्यवाद दे रही थी, उन्होंने कहा इन सन्यासियों को कि मैं भगवान को बहुत रोज धन्यवाद देती हूं कि अगर मुझे इस अवस्था में नहीं रखता तो मैं 24 घंटे उनका नाम का जप नहीं कर पाती। आज मेरे लिए कोई चारा नहीं, मैं एक जगह बैठी हूं, लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि मैं हर समय भगवान के नाम का जप कर रही हूं। तो ये देखिए, ये भक्त है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष मानो, कौन ऐसा कह सकता है ऐसी अवस्था में। और उन वो सन्यासी अपने बाकी सारे शिष्यों से कह रहे थे सीखो इनसे, ये हमें सीखना चाहिए। वो सरल सी माता जी हैं, कोई बहुत प्रसिद्ध नहीं है इस्कॉन में, कोई बहुत बड़ी भक्त नहीं है, कोई वैकुंठ से उतरी नहीं है, उनके लिए कोई विमान नहीं आया, कुछ नहीं है अभी तक, आएगा लेकिन अभी तक नहीं। लेकिन उनकी भक्ति देखिए, वो ऐसी अवस्था को भी क्या मान रही है, भगवान की कृपा है, नहीं तो मैं 24 घंटे नाम नहीं ले पाती, आज मैं एक जगह बैठकर 24 घंटे भगवान का नाम ले रही, ये कृपा है भगवान की। देखिए हमारे जीवन में जब कष्ट हो तो कैसे हमें जीवन को देखना चाहिए, भक्ति की दृष्टि से। हम में से अगर कोई भी उन माता जी की स्थिति में होगा तो कभी ये बात नहीं कहेगा, लेकिन उनकी भक्ति देखिए, वो सरल भक्त हैं। वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, पैसा इकट्ठा करती थी, जो होता था अपने गुरु को दे देती थी, बस यही सरल जीवन था उनका। कोई ऐसे बहुत बड़ी प्रचारक और ये वो कुछ नहीं, सरल जीवन, जाके सड़कों पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो पैसा मिलता था, जो बचता था, उसको जमा जमा करती रहती थी और फिर गुरु को जाकर दे देती थी कि मेरी तरफ से भेंट, बस। और ऐसे जब उनकी स्थिति हो गई तो क्या उनकी मानस, क्या उनकी चेतना है, इतनी ऊंची चेतना कि उस व्यवस्था में केवल भगवान का जप कर। तो ये कहते हैं तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो, ये भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा को समझना ये भक्तों का कार्य है। तो नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात्मया च्युत स्थितोस्मी, ये चौथा गुण, स्थितोस्मी। स्थितोस्मी मतलब स्थित रहता है, स्थिर रहता है, हिलता नहीं है अपनी स्थिति से। कौन सी स्थिति से, कृष्ण को कभी नहीं छोड़ता, स्थितो, हर अवस्था में स्थिर है, धीर है, ध्रुव, ध्रुव महाराज तपस्या करने गए। ध्रुव मतलब सिर, जो हिलता नहीं उसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुव महाराज तपस्या करने गए, बहुत कड़ी तपस्या करने लगे, सारे ब्रह्मांड में हाहाकार हो गया उनकी तपस्या के कारण, क्योंकि उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया और सांस लेना बंद करके सारे जो ब्रह्मांड की हवा थी वो अंदर खींच ली। हाहाकार मच गए, देवता आए अलग अलग रूपों में ध्रुव को हटाने के लिए, ध्रुव को तपस्या से दूर करने के लिए। इंद्र आए, वरुण आए, चंद्र आए, अलग अलग रूप लेकर। कोई आकर उनके कान में कह रहा है, ध्रुव तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई, सुनीति मर गई, जल्दी जाओ वापस। ध्रुव हिले नहीं। कोई अचानक शेर बनकर सामने आया, अचानक उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, ध्रुव हिले नहीं। किसी ने आकर कहा तुम्हारे पिता को मार दिया गया, शत्रु ने आक्रमण कर लिया, राज्य को ले लिया, जाओ जल्दी वापस, तुम्हारी आवश्यकता है, ध्रुव हिले नहीं। ये सब देवता कर रहे थे किसी तरह उसको हटा दें उसकी तपस्या। ध्रुव स्थितोस्मि। तो इसी तरह इस जगत में हमें बहुत सारे प्रलोभन और दुविधाएं आती हैं। बहुत प्रलोभन आते हैं भक्ति में, बहुत डाइवर्जन्स आते हैं। हम भक्ति करना चाहते हैं, कोई आकर तुम भक्ति कर रहे हो, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। व्यक्ति को स्थिर रहना चाहिए, कोई भी तकलीफ आए, कोई भी कष्ट आए, स्थितोस्मि, भक्ति में स्थिर है। और पांचवा लक्षण, पांचवा गुण, गत संदेह। गत संदेह मतलब कोई संशय नहीं, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे। इतने समय से भक्ति कर रहा हूं, रोज रोज मंगल आरती आ रहा हूं, अंत में कुछ मिलने वाला है या नहीं। गत संदेह, कोई संशय नहीं, अवश्य राखीवे कृष्ण विश्वास पालन। भक्त के लिए एक ही बात है, कृष्ण रक्षा करेंगे, बस। कोई संशय, कोई संशय नहीं। तो ये है भक्तों के लक्षण। और इसीलिए जब हम भक्तों के विषय में सुनते हैं, जैसे आज हमारी इच्छा थी कि वसुदेव से लेकर बाकी सारे भक्तों के गुणों की चर्चा करें, लेकिन पता नहीं भगवान की योजना थी कि पूरा एक घंटा हो गया, केवल वही चर्चा नहीं शुरू हुई अभी तक। मतलब आज की भागवतम क्लास शुरू नहीं हुई, अभी शुरू करेंगे, ठीक है? तैयार हैं आप लोग? एक ज्यादा नहीं, एक डेढ़ घंटा और बैठने के लिए, ताकि आज की भागवतम प्रारंभ हो सके। एनीवे, ये जो सारे भक्त हैं, इनका जो वर्णन किया है, इन्होंने अलग अलग गुणों को प्रकट किया भक्ति के। जैसे वसुदेव जी ने निर्भयता को प्रकट किया। कंस मार रहा है और वसुदेव जी ने निर्भयता, सत्यता और कृष्ण पर पूर्ण विश्वास। वो अपने बालक को जाकर कंस को दे रहे हैं कि मार डालो, कौन ऐसा पिता हो सकता। पहला बालक, पहला पुत्र जन्म लिया, वो भी पुत्र। आजकल लोगों को पुत्र पुत्री बहुत वो रहता, पुत्र है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा करना नहीं चाहिए, इन लोगों को लगता। और भी पहला पुत्र हो तो कितना आसक्त होते माता पिता पहले पुत्र से, अभी अभी हुआ है और जन्म हुआ, कोई उत्सव नहीं, उठाया लेके चल दिए, कंस लो मार दो। क्या क्रूर थे वसुदेव जी, कितने क्रूर नजर आ रहे हैं। छोटा सा नवजात, उसको तो देखकर कंस का भी हृदय पिघल गया। कंस ने जब देखा तो बोला, ये बच्चे को मुझे नहीं मारना, ले जाओ उसको। कंस जैसे असुर का हृदय पिघल गया, लेकिन वसुदेव जी का नहीं पिघला, वो लेके चले गए मारने के लिए। क्यों? पूर्ण विश्वास था कृष्ण पर, वो रक्षा करेंगे। तो वसुदेव जी इस गुण को दर्शाते हैं कि उन्हें श्रद्धा थी, विश्वास था, सत्यता थी, निर्भयता थी उनके अंदर। ये सब गुण आवश्यक है भक्ति के लिए। सत्यता, वसुदेव जी प्रसिद्ध थे अपनी सत्यता के लिए, इसलिए जब कंस से उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, हर एक बालक को मैं तुम्हें ला कर दूंगा, कंस ने विश्वास किया। कृष्ण प्रसिद्ध नहीं अपनी सत्यता के लिए, कृष्ण के भक्त प्रसिद्ध है, कृष्ण तो झूठ बोलने के लिए प्रसिद्ध है ना। माखन खाते हैं, यशोदा जी खाया नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बलराम बोल रहा है खाया नहीं, झूठ बोल, नहीं तुम्हारे मित्र बोल रहे झूठ, बलराम भी वो भी उनसे मिला हुआ है, सीधा झूठ बोल देते नहीं खाया। लेकिन उनके भक्त सत्यता के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए भगवद गीता में अर्जुन से वो कहते हैं कौंतेय प्रतिज्ञानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति, मैं नहीं बोलूंगा तुम जाके बोलो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। अर्जुन ने पूछा क्यों, आप क्यों नहीं बोलेंगे, मैं तो प्रसिद्ध हूं झूठ बोलने के लिए, लोग विश्वास नहीं करेंगे, जाओ तुम बोलो, तुम बोलोगे तुम मेरे भक्त हो, तुम बोलोगे तो वो विश्वास कर लेंगे, मैं बोलूंगा तो बोलेंगे ये तो बचपन से झूठ बोलता आया है, इसकी क्या बात मानना। लेकिन कृष्ण के भक्त सत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, वो सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ते, और कृष्ण परम सत्य हैं। ये तो हम लोग लीला के लिए कह देते हैं कि कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, वैसे क्या झूठ है। जब यशोदा ने पूछा कि तुमने चोरी की, उसने कहा नहीं मैंने चोरी नहीं की, वो सही है, क्योंकि वो क्या चोरी करेंगे, उनका ही माल है, इसलिए चोरी नहीं की, तो झूठ नहीं बोला। यशोदा ने पूछा मिट्टी खाई, उन्होंने कहा नहीं खाई, तो क्या झूठ, झूठ नहीं बोला, मिट्टी खाई थी, सब बता रहे हैं, बलराम जी कह रहे हैं, सारे बालक कह रहे हैं, बोले नहीं मैंने नहीं खाई। क्यों नहीं खाई, वो उन्होंने दिखाया कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये देखो जो खाया, ये भौतिक जगत ये मिट्टी के समान है, ये सारे ब्रह्मांड ये सब ये है मेरे मुख में, मिट्टी नहीं है, तो झूठ नहीं बोला। लेकिन फिर भी बाहरी दृष्टि से एक लीला मात्र से झूठ लगता है। कृष्ण परम सत्य हैं, और जो भी उनसे जुड़ता है वो सत्य का पालन करता है। तो वसुदेव जी का ये एक गुण था, और भी बहुत सारे गुण हैं, बाकी भी जितने लोगों का वर्णन किया है, विशेषतः बलराम जी का वर्णन किया, हम चाहते थे बलराम जी का ज़्यादा चर्चा करें, लेकिन समय अभी नहीं है, फिर कभी इस विषय पर आगे चर्चा करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं? यस मुझे समझ नहीं आया, पहला आपने क्या कहा? हाँ राइट राइट, आपके प्रश्न में उत्तर है। आपने प्रश्न किया कि हमने बताया कि बहुत कम लोग जो है बद्ध हैं, ज्यादा लोग मुक्त हैं, राइट? लेकिन दूसरी ओर हम लोग ये भी बोलते हैं कि इस भौतिक जगत में बहुत कम लोग भक्ति करते हैं, ज्यादा लोग नहीं, तो ये यही पूछ रहे हैं ना। तो उत्तर ये है कि हमने भौतिक जगत में नहीं कहा, इस भौतिक जगत में लोग कम भक्ति करते हैं, लेकिन जब हमने कहा कि कुछ लोग जेल में हैं बाकी सब बाहर हैं, उसका अर्थ है कुछ लोग भौतिक जगत में हैं और बाकी सब बाहर हैं। तो ये जो भौतिक जगत है ये जेल की तरह है, हाँ उसके अंदर बहुत थोड़े से लोग बाहर जाने का प्रयास करते हैं, वो भक्त हैं। जो जेल में हैं उनमें से बहुत थोड़े लोग बाहर जाने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बहुत थोड़े लोग भक्ति करते हैं। लेकिन है सब जेल में, तो जो सारे लोग जेल में हैं वो बहुत थोड़े हैं। जितने ये ब्रह्मांड हैं इस जगत में, सारे ब्रह्मांडों को मिलाकर जो भी जनसंख्या है बहुत थोड़ी है आध्यात्मिक जगत की तुलना में। भगवद गीता में भगवान कहते हैं एकांशेन स्थितो जगत, ये जो भौतिक जगत है ये एक कोने में है बस, उसमें थोड़े से लोग हैं, बाकी सब तो मुक्त हैं, वो शुद्ध हैं, वो इस भौतिक जगत के बाहर अंदर नहीं। भौतिक जगत में जो लोग हैं वो सारे जेल में। तो हमने क्या कहा था, एक राज्य में जेल में कम लोग होते हैं बाहर ज्यादा होते हैं, तो पूरा जो आध्यात्मिक भौतिक जगत मिला के ये एक जगत है, उसमें जो मुक्त हैं वो ज्यादा हैं, जो बद्ध हैं वो बहुत थोड़े हैं जो जेल में हैं। अब जो थोड़े जेल में हैं उनमें भी बहुत कम लोग बाहर जाने का प्रयास करते हैं, बाकी सब खुश हैं इधर, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, तो वो लोग हैं। लेकिन उनमें से बहुत थोड़े लोग बोलते हैं कि नहीं जाना है, भगवान के धाम जाना है। तो फिर इसीलिए कहा जाता है कि बहुत थोड़े लोग भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने वर्णन किया कि बाहर है वो सारे लोगों का, सभी जीवों का मिला, और जब हम लोग वर्णन करते हैं कि कम लोग भक्ति कर रहे हैं, वो केवल भौतिक जगत का, ठीक है। और कोई प्रश्न? यस, यस, व्हाट आर द 9 points? There is a verse in the second canto, I think 9th chapter, I'm not sure of the verse number, which says, Atra sarva visarvascha sthanam poshanam uttaya ishanu katha manvantra mukti nirod mukti ashraya. These are the 10 points. So the first one is sarga. Sarga means elementary creation. Now if I go on explaining, there will be, you just hear the words. Sarga means creation, primary creation, elementary creation. Visarga is the secondary creation. So, Atra, Sarga, Visarga. Visarga means secondary creation. These are the topics mentioned in Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam mentions about creation, secondary creation at the level of Brahma. And so, Atra, Sarga, Visarga is just sthanam. Third is sthanam, places. So, sthanam means the places given for living entities to stay. They are 84 lakhs, subdivisions, main divisions are 14. So 14 planetary systems and 84 lakhs subdivisions, they are called sthana. Then poshanam. Poshanam means nourishment by the Lord. How Lord nourishes even those who are in this material world. So that's called poshanam. And fifth is uttaya. Uttaya means creative impetus. And sixth is Ishanukatha. Ishanukatha means the pastimes of the Lord. Katha means pastimes. Ish means Lord. So Ishanukatha. So Ishanukatha also means the pastimes of Lord and His devotees. Anu means one who follows. So Ishanukatha, that is the sixth. And seventh is Manavantara. Manavantara means one period of each Manu. There are 14 Manus in one day of Brahma, and each Manu has a period of about 71 Chaturyuga. So that is called Manavantara. So that is the seventh, Ishanukatha Manavantara. Eighth is Nirodha, Mukti. Mukti means liberation. And ninth is Nirodha. Nirodha means winding up. How this first was creation, and ninth is Nirodha means winding up. Everything is, you know, like pralaya, annihilation. And tenth is ashraya. Ashraya means the actual place where we can surrender. So that is Krishna. Is that okay? Yes. हाँ, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जैसे बारिश आई सब समाधि लगा के बैठ गए, ओम शांति शांति शांति, कृष्ण उठा के ले जाएंगे। वो भी भाग रहे थे, वो भी अपने आप को बचा रहे थे, लेकिन कृष्ण का स्मरण। तो हमें इस भौतिक जगत में प्रयास करना है, लेकिन ये जानना है कि अल्टीमेटली कृष्ण ही बचाएंगे, बचाने वाले कृष्ण। हमारे प्रयासों से हम नहीं बचने वाले, लेकिन प्रयास डेफिनेटली करना है, लेकिन ये विश्वास मन में रख के कि हमारा प्रयास सफल तब होगा जब कृष्ण कृपा करेंगे। ये भक्त है, प्रयास नहीं करना ये तो ठीक नहीं है, प्रयास तो करना है, लेकिन प्रयास करने में ये सोचना कि मैं अपने प्रयास से सफल हो जाऊंगा, ये भक्ति नहीं है। प्रयास करके हमें ये सोचना कि मैं, मेरा कर्तव्य प्रयास करना है, फल देना कृष्ण का काम है, ये भक्ति, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? यस,
थोड़ा जोर से, विसर्ग, हाँ,
विसर्ग क्या है पूछ रहे हैं? सर्ग समझ में आया नहीं समझ में आया बताओ सर्ग क्या है? हाँ, भगवान ने जो क्रिएशन किया है। नहीं, सर्ग और विसर्ग ये सृष्टि की रचना के दो भाग हैं। सर्ग को कहा जाता है प्रथम स्तर की रचना, जिसमें पूरे भौतिक जगत की रचना नहीं होती है, आधी होती है। एक उदाहरण देते हैं, आटा आटा गूंदते हैं ना, किचन में गए हो ना कभी? हाँ, आटा गूंदा जाता है, तो आटा लेकर गूंदना ये सर्ग है। फिर उसको तोड़ के उसके गोल बनाकर उसको रोटी बनाना ये विसर्ग है। समझ में आ गए? नहीं समझ। रचना करने के लिए जो चीजें चाहिए उनको पहले उत्पन्न करना पड़ता है। जैसे हमें रोटी बनानी है तो पहले आटा चाहिए, आटा चाहिए तो पहले गेहूं चाहिए, तो पहले गेहूं उत्पन्न होगी तभी तो रोटी बनेगी ना, सीधे रोटी नहीं बन सकती, लेकिन अंत में रोटी बनती है, हम खाते रोटी हैं, राइट? तो जो गेहूं बनाना, उसको आटा बनाना, ये जो चीजें हैं इसको कहा जाता है प्रथम स्तर की रचना। वो भी रचना हो रही है ना, वो भी क्रिएशन है। तो जो इस जगत को बनाने के लिए चीजें चाहिए, जैसे पहली रचना महाविष्णु करते हैं और दूसरी रचना विसर्ग ब्रह्मा जी करते हैं, तो ब्रह्मा जी को रचना करने के लिए कुछ तो चाहिए, उनको जीवों को शरीर देने हैं, लेकिन शरीर देने के लिए भूमि चाहिए, आकाश चाहिए, जल चाहिए, वो कहां से आएगा? वो महाविष्णु करके देते हैं। तो पहली रचना महाविष्णु करते हैं, जिसमें वो इस भौतिक प्रकृति के लिए जो बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसको प्रदान करते हैं, भूमि, रातो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, ये सब वो दे देते हैं, तीन गुण प्रकृति के, ये सब वो रचना कर देते हैं। फिर उन चीजों को केवल मिलाकर ब्रह्मा जी 84 लाख योनिया, फिर ये सब वो रचना करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं भागवत में, ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की, उसकी रचना की, जगत बनाया, ये बनाया, ये सब ब्रह्मा जी करते हैं महाविष्णु से चीजों को लेकर। अगर महाविष्णु उनको चीजें प्रदान नहीं करें तो ब्रह्मा जी रचना नहीं कर सकते। तो इसलिए महाविष्णु के स्तर पर जो रचना है उसको सर्ग कहते हैं, पहली रचना। फिर उसको लेकर, उस चीजों को लेकर ब्रह्मा जी दूसरी रचना करते हैं, उसको विसर्ग कहते हैं। समझ में आया? थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का? सर्ग विसर्ग स्थान। हाँ, नहीं, वो भी विसर्ग ही है, क्योंकि जो ऑलरेडी अवेलेबल मटेरियल हैं उनसे ही साइंटिस्ट कुछ बना सकते हैं, अपना कुछ नहीं बना सकते। कोई भी वैज्ञानिक अपनी कुछ नई चीज नहीं बना सकता, उसको बनाने के लिए कुछ तो चाहिए। जैसे वो कहे कि मैंने कोई नई गैस बनाई है, नई गैस या तो वो लोग खोजते हैं, उसको डिस्कवरी बोलते हैं, यू नो, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक्सरे डिस्कवर हुआ, क्रिएशन नहीं, कोई नहीं कहता कि एक्सरे क्रिएट की गई या हाइड्रोजन क्रिएट किया गया, डिस्कवर, डिस्कवर मतलब ऑलरेडी है पहले, उसको खाली खोजना। तो साइंटिस्ट जो होते दो चीज करते हैं, एक जो ऑलरेडी चीजें उनको खोजते हैं, और दूसरा जो चीजें हैं जो मिल चुकी हैं उनसे कोई अलग चीज बनाते हैं, बस। कोई नई चीज ईजाद नहीं कर सकते साइंटिस्ट, कि ऐसी कोई चीज बना दी जो कभी थी ही नहीं, जिसके लिए उन्होंने कोई भौतिक जगत की चीज नहीं ली, ना भूमि ली, ना वायु ली, ना जल लिया, ना आकाश लिया, कुछ नहीं लिया, अचानक कोई नया एलिमेंट बना दिया, हो ही नहीं सकता। कुछ भी बनाए वो रॉकेट बनाए, स्पेसशिप बनाए, हम लोग बोलते हैं स्पेसशिप तो पहले नहीं था, स्पेसशिप उस रूप में नहीं था, लेकिन स्पेसशिप का मटेरियल तो था ना यहीं पे, बनाया कहाँ से? क्या लोहा उन्होंने बनाया? नहीं, वो तो ऑलरेडी था, खाली आपने धरती से खोद दिया उसको। तो इस तरह से साइंटिस्ट जो करते हैं वो भी विसर्ग ही है, ब्रह्मा जी की एक परंपरा कह सकते हैं। तो वो लोग भी केवल बनाते हैं, लेकिन वो उस स्तर का नहीं है, विसर्ग नहीं कहा जाता तो उसे, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के स्तर की रचना भी नहीं है, छोटी मोटी रचना करते हैं, साल 200-500 साल में खत्म हो जाती है, फिर वो कर। ब्रह्मा जी की कितने चलती है? 1000 चतुर्युग तक उनकी रचना चलती है। ओके, और कोई प्रश्न? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आज दोपहर को कृष्ण जन्म की कथा कहेंगे। हम लोग कृष्ण लीला पर चर्चा कर रहे हैं, तो कृष्ण का जन्म कैसे हुआ वो चर्चा आज दोपहर को होगी। हरे कृष्णा।